आहान की चुप्पी। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले मामूली सी फाइट देखकर डर गई थी और बंदूक देखकर सहम गई थी, वो क्वीन कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं अरमान के मन में ये जोक ऑफ द डे लग रहा था। उसका दिल तो हंसने को कर रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसे हंसने की इजाज़त नहीं दे रही थी। अब आगे फिलहाल अरमान ने टाइगर को घूर कर देखा। वही टाइगर अरमान की तपिश भरी नज़रों को भांपते हुए तुरंत सीधा होकर बैठ गया। अरमान को इरिटेट देखकर आस्था के मन में एक ही ख्याल आया, भले ही किसी आदमी की सारी यादाश्त क्यों न चली जाए, लेकिन फिर भी वो आदमी अपनी बीवी को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सोचते हुए आस्था के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। फिलहाल वे लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में आहान रोनी सी शक्ल बनाकर सीधा कॉरिडोर से डिलीवरी रूम की ओर एकटक देख रहा था, जहां रौनक थी। वो बार बार रश्मि के पास जाकर सवाल कर रहा था, रश्मि दीदी कुछ खबर मिली? मेरा बच्चा कब तक आएगा दुनिया में? रश्मि दीदी रौनक ठीक तो है ना? रश्मि दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रश्मि दीदी और कितना टाइम लगेगा मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने में? आहान ने रश्मि पर सवालों की बौछार कर दी थी। कहीं ना कहीं उसके लगातार सवालों ने रश्मि को पूरी तरह से परेशान कर रखा था। रश्मि को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन वो चुप रही। वहीं सभी लोग बार बार आहान को शांत करवाते हुए उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। तभी ध्रुव वंशिका के साथ वहां पहुंच चुका था। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। ध्रुव ने वंशिका को सख्ती से मना किया था कि एंटीडोट के गायब होने वाली बात वो किसी के सामने ना बताएं, क्योंकि इस वक्त वहां का माहौल शांत था और सभी रौनक और उसके बच्चे की चिंता में परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि मारिया भी उसी रूम में थी। वहीं नानी माँ ने इरिटेट होकर आहान को रोका और उसे धीमी आवाज में समझाते हुए बोली, अरे आहान बिटवा, तनिक शांत हो जाओ। अरे इतने उतावले तो हमने आज तक किसी को भी नहीं देखा। इतने तो उतावले हमारे दामाद जी भी नहीं थे। हाँ, वो थोड़े गुस्से वाले जरूर थे, लेकिन इतनी जल्दबाजी उन्होंने भी नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। नानी माँ की इस बात पर अगले ही पल आहान और ज्यादा एक्साइटेड होकर बोला, लेकिन नानी माँ, मैं तो पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना, आप देखना मैं एकदम परफेक्ट वाला बाप बनूंगा, सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे बेस्ट पापा, ताकि मेरा बच्चा जब भी गाना गाएगा तो वो यही गाना गाएगा, मेरे पापा मेरे हीरो, आई लव यू डैडी, आई लव माई डैडी, ओह मेरे पापा द ग्रेट। ये कहते हुए उसने एक्साइटेड होकर ड्रामा करना शुरू कर दिया। सभी लोग आहान की आवाज़ से छलक रही खुशी को साफ समझ पा रहे थे और उसकी नौटंकी देखकर सब हंस पड़े। उसके इन शब्दों ने वहां के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। तभी रश्मि ने हवा में हाथ लहराया और वहां सबको शांत करवाने के बाद एकदम से कहा, आहान तुम यहां इंतजार करो, मैं अंदर जा रही हूँ, रौनक की हालत कैसी है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें आकर बताती हूँ, ठीक है? ये कहकर रश्मि ने मन ही मन आह भरी और आहान को शांत रहने का इशारा करते हुए वो सीधा अंदर चली गई। रश्मि की इस बात पर आहान ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर चिंतित होकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। अंदर रौनक का हाल बहुत बुरा था, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार चिल्ला रही थी, आह आह। रौनक अब और खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से से चीखते हुए बोली, रश्मि दीदी बुलाओ उस छचुंदर को अंदर, देखिए उसकी वजह से मेरा क्या हाल हुआ है, देखा आपने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। ये कहकर वो धीमी आवाज में रो पड़ी, हाँ हाँ। फिर वो झल्लाई, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी खासी चल रही थी, मैं कितनी खुश थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी, और अब देखो मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं तो अपनी उस रॉयल बाइक के साथ ही खुश थी। रौनक जो इस वक्त दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो पूरी तरह गुस्से से फट पड़ती है। वो लगातार आहान को गालियां दे रही थी और अपना सारा गुस्सा और झुंझलाहट बस आहान पर उतार रही थी। वहीं ठीक उसके बराबर में मारिया भी लेटी हुई थी, जो रौनक की आवाज में दर्द और इरिटेशन साफ साफ महसूस कर रही थी। रश्मि ने अचानक से देखा कि उसके सहकर्मी किसी और लड़की की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही रश्मि की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं और वो एकदम से बोली, मारिया दीदी आप भी यहाँ हैं? रश्मि की इस बात को सुनकर रौनक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मारिया को वहां देखकर वो एकदम हैरान और आश्चर्यचकित रह गईं। वहीं उसके बगल में लेटी मारिया पूरी तरह शांत थी, जैसे कुछ सोच रही हो या शायद सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस और दर्द को संभाल रही हो। हालांकि उसको किसी भी पल बेबी डिलीवर होने वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। मारिया को इतना शान देखकर रौनक ने कंफ्यूज होकर आईब्रो चढ़ाई और वो दंग रह गई। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रश्मि की ओर देखकर एकदम पूछती हैं, ये क्या हो रहा है, मेरी तो यहाँ दर्द के मारे जान निकल रही है, और मारिया दीदी वो इस सिचुएशन में इतनी शांत और चुप कैसे रह सकती हैं? ये बोलते हुए रौनक की आंखें हैरान से फैल गईं। रौनक की आखिरी लाइन सुनते ही रश्मि के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने अपने सिर पर हाथ मार लिया और मन ही मन आह भरी। फिर उसने रौनक को घूरते हुए सोचा,
रौनक और आहान की जोड़ी ऊपर वाले ने एकदम परफेक्ट बनाई है, मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक से बढ़कर एक दिमाग खजाने वाले नमूनों में से हैं। फिलहाल जल्दी से रश्मि मारिया के पास गई और उसका हाथ थाम कर बोली, अब आप ठीक है ना? मारिया ने अपनी पलकों को झुका लिया। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। तब तक आस्था, अरमान और टाइगर अंश के साथ अस्पताल पहुंच चुके थे। वहीं आहान ने जल्दी से जाकर सीधे आस्था को गले से लगा लिया और बेचैनी से कहा, देखिए ना भाभी, रश्मि भाभी कब से अंदर गई हुई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आप जानती हैं मैं कितना परेशान हूँ। आप तो जानती हैं ना मेरी हालत कैसी हो रही है अंदर से। आपको पता है आपकी डिलीवरी के वक्त जब मैंने अरमान भाई का हाल देखा था तो मैं कितना डर गया था। मेरे अरमान भाई आपके और बच्चे के लिए कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे उन्होंने तो डॉक्टर को धमकी तक दे दी थी कि अगर आपको जरा सी भी तकलीफ हुई तो वो पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देंगे। पता है आपको मेरे अरमान भाई उस समय कितना ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लिया था, लेकिन ये लोग तो मुझे कुछ भी कहने नहीं दे रहे, बार बार चुप रहने के लिए कह रहे हैं। वहीं ध्रुव आहान की उठपटांग बातें सुनकर अगले ही पल अरमान की तरफ देखने लगा। अरमान को भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने एकदम से सोचा, क्या वाकई उसने ऐसा किया था? क्या वो इस लड़की के लिए इतना पजेसिव था कि उसने हॉस्पिटल तक को आग लगाने की धमकी दे दी थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान सिंघानिया जैसी शख्सियत किसी लड़की के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? हालांकि वो इस सच को मानना नहीं चाहता था, लेकिन अरमान समझ सकता था, वो खुद को धोखा नहीं दे सकता था। तभी ध्रुव अचानक से आगे आया और आहान को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। ध्रुव ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और उसके कानों के पास जाकर बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, अबे ये क्या कर रहा है तू? शेर के सामने उसकी बुराई कर रहा है। जानता है तेरी इस हरकत का क्या अंजाम हो सकता है? तुझे अपने बच्चों की शक्ल देखनी नहीं है क्या? तुझे ऐसी बातें करके अरमान भाई से पंगा लेने की क्या जरूरत है? इतना सुनकर आहान का चेहरा एकदम ठिठक गया। वो ध्रुव की बातों के पीछे छिपी चेतावनी को अच्छे से समझ रहा था और अगले ही पल आहान एकदम से हड़बड़ा कर बोला, अच्छा हुआ तूने मुझे वहां से बचा लिया।
फिलहाल टाइगर को वहां देखकर सभी के मन में बस एक ही सवाल था, टाइगर भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी इस बारे जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए आस्था ने खुश होते हुए जल्दी से सबको बताया कि मारिया दीदी भी यहीं एडमिट है। आस्था के मुंह से निकले शब्द सुनकर अब सभी लोग रौनक और मारिया के सही सलामत होने की दुआ करने लगे। वहीं आस्था भी पूरी तरह शांत खड़ी थी और मन ही मन वो भी रौनक, मारिया और बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। अंश दादाजी की गोद में मजे से खेल रहा था। फिलहाल करीब दो घंटे की मेहनत के बाद रौनक के चिल्लाने की आवाज़ बंद होती है और बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, जिससे वहाँ का सारा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे ही बच्चों के रोने की आवाज़ें आईं, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। रश्मि फिर बाहर आई और एकदम से टाइगर को देखकर बोली, मुबारक हो टाइगर भैया, आपको बेटा हुआ है। जैसे ही रश्मि ने ये कहा तो ये सुनकर अगले ही पल सब लोग खुशी से झूम उठे। वहीं अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मशीन जैसी ठंडी आवाज में कहा, कंग्रेचुलेशंस टाइगर। अरमान का कंग्रेचुलेशंस ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एहसान की तरह कह रहा हो। फिलहाल आस्था और बाकी सब बहुत खुश थे। फिर आस्था चहकते हुए बोली, टाइगर भैया कंग्रेचुलेशंस, आपको पता है हम सब आपके लिए कितने खुश हैं। सभी ने टाइगर को अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दी थी। रश्मि बच्चे को उसके आगे करते हुए अपनी गोद में लेने के लिए बोलती है। ये सुनकर टाइगर अपने कांपते हाथों से बच्चे को अपने हाथों में ले लेता है। टाइगर जैसे ही बच्चे को अपने हाथ में लेता है उसके हाथ लड़खड़ा जाते हैं, तो दादाजी तुरंत सहारा देते हुए बच्चे को फिर से उसके हाथों में दे देते हैं। बच्चे का फेस देखकर टाइगर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी आहान जल्दी से रश्मि के पास आकर पूछता है, रश्मि दीदी मेरा बच्चा कब आएगा? मेरा बच्चा कहाँ है? आपने उसके बारे में अभी तक कुछ बताया ही नहीं। ये बात कहते हुए आहान के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह और खुशी थी। आहान के सवाल करने पर रश्मि ने पलके झपकाते हुए हामी भरी, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे बोली, एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर देर न करते हुए रश्मि एक बार फिर अंदर गई, पर इस बार उसके हाथों में एक बहुत ही क्यूट सा खूबसूरत बच्चा था। रश्मि ने बच्चे को आहान की गोद में देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस आहान, तुम एक बेटी के बाप बन गए हो। बच्ची भी अपनी आंखें फाड़कर आहान को टुकुर टुकुर देख रही होती है। आहान को समझ में नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसने पूरे 8 महीने इस बच्चे के आने का वेट किया और अब उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो उसे समझ नहीं आया वो किस तरह से अपनी फीलिंग बताए, उसे कैसा महसूस हो रहा है। आहान के पास उस समय अपने जज्बातों को बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। जैसे ही रश्मि ने ये कहा वैसे ही सभी लोगों के चेहरे पर फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। सबके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। वहीं अरमान को न जाने क्या हुआ, वो मन ही मन ये जानकर काफी खुश हो गया था कि आहान को बेटी हुई है। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना ज्यादा खुश क्यों है। वहीं दादाजी तो खुशी से झूमने लगे।
उन्होंने तुरंत जाकर बच्चे और आहान दोनों को गले से लगा लिया था। आहान का रिएक्शन देखकर दादाजी उसके पैर पर पैर मारते हुए बोले, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हारी बेटी हुई है? ये सुनकर आहान अपने ख्यालों से बाहर आकर सवालिया नजरों से दादाजी की तरफ देखता है। उस वक्त आहान पूरी तरह से शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। कहां तो वो बच्चा होने की खबर सुनने के लिए बेताब था, और अब जब उसका बच्चा उसकी गोद में था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब तरह की उथल पुथल मची हुई थी। वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। तभी ध्रुव में आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सभी लोग थोड़े इमोशनल हो गए थे और बच्चों को बारी बारी से देखते जा रहे थे, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों बच्चे भी अपनी टिमटिमाती आंखों से सबको टुकुर टुकुर देख रहे थे। कुछ देर बाद रौनक और मारिया दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। देर न करते हुए सभी लोग वहां जमा हो गए। आहान ने अब तक अपने एक्सप्रेशन जाहिर नहीं किए थे। वो एकदम शॉक में था। रौनक ने देखा कि सभी लोग उसकी बेटी को देखकर कितनी खुशी मना रहे हैं, लेकिन आहान तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वहीं आस्था आगे बढ़ी, उसने रौनक के माथे को चूमा और उसे बहुत सारी मुबारकबाद दी। पर जैसे ही रौनक ने आहान का चेहरा देखा, वैसे ही उसकी नम आंखें और भी उदास हो गई, जैसे उसका दिल टूट चुका हो। वो परेशान होकर सोचने लगी, क्या मुझे बेटी हुई है इसलिए आहान ऐसा बर्ताव कर रहा है? क्योंकि उसने देखा था कि आहान अंश को कितना प्यार करता है, उसे खिलाता है, उसके लिए ढेर सारी बाइक्स, गाड़ियां, महंगे बॉक्सिंग ग्लव्स तक खरीद चुका है। शायद आहान भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे भी बेटा ही होगा। ये सोचकर अचानक रौनक के दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगता है। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।